बंधो जगतपते गोपेश गोपिकाकांत राधाकांत तप्त कंचन गौरंगी राधे वृंदावनेश्वरी विषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि। हा देवी काकू भरगद गदयाद्य वाचा जाचे निपत्त भूमि दंडवत बुध भटारती अस्य प्रसादम बुधस्य जनस्य कृत्वा गंधर्विके तव गणे गणनम् अंगश्यामलिं छटाभिरभितो मन्दे कृतेन्दीवनं जट्टं जागुदरोति सांविदधतं पट्टम्बरस्य श्रिया वृन्दारण्यनिवासिनं हृदि लसद्दामाभिरामोदरं राधास्कन्दनिवेशितो जलन्यायीं अत्यापि हीनाय पराधल क्षिप्ताश्च कामादितरङ्गमध्ये कृपामयि त्वां शरणं प्रपन्ना इन्दे नमस्ते। गुरवे गौरचन्द्राय राधिकाय कृष्णाय कृष्णभक्ताय सद्भक्ताय प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातरया जुहाव पुत्रेति तन्मयतया तर्वोभिनेदु तं सर्वभूतहृदयं मुनिमान् तवैवास्मि तवैवास्मि न जीवामि त्वया विना इति विज्ञाय राधिकन्नलिमान् कृष्ण का आविर्भाव हुआ है। आविर्भाव और जन्म दोनों का हम लोगों ने वर्णन किया। तो पंडित समाज जीता था, वो लोग कुछ वर्णन कर रहे थे कि कृष्ण जब आए उसका वर्णन सुखदेव गोस्वामी जी ने तृतीय स्कंध में किया है, जो परस्पर विरोधी है। कमल दिन में खिलता है, किंतु यहाँ पर बतलाया जलस हृदय जलसरोहस्य उस समय कमल खिल गए और काल कभी भी अच्छा नहीं होता। काल माने क्या? जिसको यम कहते हैं, काल ही जगत को नचा रहा है, सभी लोग काल के बस हैं। ऐसा कोई नहीं जो काल का बस नहीं है। कोई जरूरी नहीं कि एक बच्चा मर जाएगा और उसका पिता का पिता जीवित रहेगा, कोई जरूरी नहीं। इसी तरह से रात में हम सो जाते हैं, दिन में जगते हैं, सवेरे होते ही उठते हैं, फिर रात में सो जाते हैं। ऐसा कोई नहीं है जो काल के वशीभूत नहीं है, किंतु यही काल सर्वगुण उपेत काल परम शोभन जब कृष्ण का जन्म हुआ ये काल भी समस्त गुणों से संपन्न हो गया, क्योंकि उसके प्रभु आ रहे हैं। आकाश साफ है, तारका मंडल साफ आकाश में एकदम झकझक चल रहा है, और उसी समय में वसुदेव जी लेकर के जा रहे हैं। इसका वर्णन मिलता है जो वर्षा हो गई थी घड़ा को, जमुना में बाढ़ है, बाढ़ में पानी निर्मल नहीं रहता, मट्टी से भरा रहता है, और वहाँ पर कह रहे हैं नदियाँ अत्यंत सुंदर स्वच्छ निर्मल सुगंधित पानी से भरी हुई। जितने भी वो बतला रहे थे संसार में परस्पर जितनी भी विरोधी बातें हैं, परस्पर विरोधी बातें हैं, वो सभी कृष्ण में संभव हैं। किसी के पुत्र नहीं है, यशोदा के पुत्र हैं। किसी के सखा नहीं है, किंतु ब्रजवासियों के सखा हैं। किसी से न तो प्रसन्न है, न किसी के प्रति उदासीन है, न शत्रु है, फिर भी ब्रजवासियों के पुत्र हैं, किसी के सखा हैं, प्रियतम हैं। ये कृष्ण में सब विरोधी धर्म एक साथ में हो सकते, और किसी में नहीं। इसी तरह से समस्त कुछ दिशाएं साफ हो गई, काल भी परम समस्त गुणों से युक्त हो गया, उस समय कृष्णचंद्र जी प्रकट हुए। वो कहने का उसका ये तात्पर्य था, एक साथ में मथुरा में और गोकुल में दोनों जगह जन्म ले सकते, उनके लिए असंभव है। कृष्ण परम सत्य हैं, सब सत्य उन्हीं से निकलता है, तभी मैंने मक्खन नहीं खाया, झूठ भी बोलते हैं। परम सत्य स्वरूप अवधर में चोरी भी करते हैं, सभी उनमें संभव है, और किसी में संभव है। इसलिए यदि वो मथुरा में आदिभूत होते हैं तो गोकुल में जन्म लेंगे, ये कोई विरोधी बात नहीं है, मनुष्यों के लिए संभव है। जो यहाँ जन्म लिया तो यहाँ पर प्रकट हुए, वहाँ पर जन्म कैसे लिया, क्योंकि उनके लिए कोई भी असंभव बात नहीं है। इसी को पंचम स्कंध में बतला रहे कृष्ण जी हंस के कारागार में आधी रात के समय में प्रकट हुए, चतुर्भुज रूप में शंख चक्र गदा पद्म लेकर। उनको प्रतीत हुआ वसुदेव देवकी को, अरे ये तो वही भगवान है जिन्होंने हमको पूर्व जन्म में वरदान दिया था, और सारी बातें उनको याद आ गई। हाथ जोड़ करके स्तव स्तुति करने, साथ ही साथ में उनको डर हुआ कहीं कंस आया, और बच्चे को मारने की चेष्टा न करें। साथ ही साथ उन्होंने प्रार्थना की दुखी हो जाओ, बच्चे बन जाओ तो हम कुछ चेष्टा करेंगे तुम्हें बचाने के लिए। कभी भगवत भाव और कभी भगवत भाव नहीं, दोनों एक साथ में ऐश्वर्य और माधुर्य, यही भगवान की विचित्र लीला है। बस साथ ही साथ में गोकुल में जो जन्मे थे यशोदा जी के गर्भ से, यशोदा जी अभी मीठी मीठी नींद जैसी बेहोशी में थी, पुत्र हुआ या कन्या उसको पता नहीं। जब यहाँ पर प्रकट कृष्ण हुए तो गोकुल में एक साथ में दोनों का जन्म हुआ, यहाँ जन्म यहाँ पर प्रकट। और 10-15 मिनट या आधा घंटा के बाद में एक कन्या भी जन्मी यशोदा के गर्भ से। जैन लोगों ने प्रार्थना की, स्तव स्तुति में समय लगा, वो कृष्ण स्वयं यहाँ आकर के और दोनों मिलकर के एक हो गए। उसी को वसुदेव जी लेकर के वहां पर रखे। मुझे भागवत में तो लिखा नहीं, सब जगह सब बातें नहीं होती। भागवत में वैसे लिखा है, समझने वाले समझेंगे, जो नहीं समझेंगे वो नहीं समझेंगे। हरिवंश पुराण में, महाभारत खिल हरिवंश, ये सब बातें लिखी। वहां पर यशोदा जी के गर्भ में जमज संतान पैदा हुई, उसी में श्री कृष्ण यहां आकर के इसको एक करके एक हो गए, तब ये लेकर के वहां पर। सवेरे 4 बजे ब्रह्म मुहूर्त में सबको पता लगा, वहां पर गोकुल में यशोदा जी ने एक पुत्र दिया, लड़की को तो लेकर के चले आए नंद बाबा जो वसुदेव जी, और वो कंस के हाथों में आकर के वो आकाश में चली गई अस्त्र भुजा दुर्गा के रूप में। बोलिए तुम्हें मारने वाला अनंत्र पैदा हो गया, तू हमें क्या मारेगा। उसने कहा कि देवी तो ये सब कहती है, कहाँ पैदा हो गया। अब वो अपने सेनापतियों के साथ में उस बच्चे को मारने की प्रचेष्टा कर रहे। इसके बाद में वहां पर जब विचारों तरफ में पता लगा कि नंद बाबा को पुत्र हुआ है, यशोदा जी को पुत्र हुआ है, तो वहां पर बधाइयां बजने लगे, चारों तरफ में फैल गया, ये बात फैली कि इनको पुत्र हुआ है। चारों तरफ से लोग सब आगे लगे दर्शन करने के लिए। नंद बाबा जी बड़े प्रसन्न हुए, आज उनके घर में बच्चे ने जन्म लिया, खुशी का सुखदेव गोस्वामी वर्णन कर रहे हैं। हम लोग एक ही श्लोक का यहाँ पर व्याख्या करेंगे। नंदस्तु आत्मज उत्पन्ने जाताह्लादो महामना आहुय विप्राण वेद ज्ञान स्नात सुचिर अलंकृता वाचयित्वा स्वस्थायन जातकर्माद्य जातकर्मा आत्मजस्य वै कार्यमास विधिवत पित्य देवार्चनम तथा। सुखदेव गोस्वामी जी बड़े प्रसन्न हो रहे हैं, परीक्षित महाराज जी को सुना रहे हैं, यही उनका प्रश्न था। करें नंदस्तु, नंद भी पुत्र के उत्पन्न होने पर बड़े प्रसन्न हुए, जाता हलाद अत्यंत प्रसन्न हुए। ये नंदस्तु अर्थात भी, नंद भी बड़े प्रसन्न हुए, माने क्या भी मैं दिल्ली जा रहा। अच्छा, वो भी दिल्ली जा रहे हैं, वे भी दिल्ली जा रहे हैं, माने क्या, माने कोई और जा रहा है तब भी लगेगा। इसलिए यहाँ पर नंदस्तु आत्मज उत्पन्ने, नंद महाराज जी को आत्मज उत्पन्न हुआ, किंतु तू का यहाँ पर अर्थ है यो ही तू नहीं बैठा दिया श्लोक की पूर्ति करने के लिए, बल्कि वहां पर कृष्णचंद्र जी उनके वरदान के वजह से देवकी और वसुदेव को वरदान दिया था, इसलिए आंशिक रूप में केवल ऐश्वर्य भाव को प्रकट करके हाथों में कंकर, 16 वर्ष की उम्र, घुघराले केस, मुकुट सोने का, चतुर्भुज रूप धारण करके, शंख चक्र गदा करके, पीतांबर पहने हुए, समस्त अलंकारों से अलंकृत होकर के प्रकट हो गए और वहां पर जन्म लिए। इसी के लिए कह रहे हैं वसुदेव देवकी को भी बहुत आनंद हुआ, अब इसलिए भी कह रहे हैं माने इनको भी, इसलिए भी का अर्थ, इसलिए आत्मज किसको कहते हैं, आत्मा वही जायते पुत्र, आत्मा ही पुत्र के रूप में प्रकट हो। इसलिए कुछ लोग यहाँ पर ये कहते हैं पुत्र तो देवकी को हुआ वसुदेव को, और वहां रखा है यशोदा जी धात्री केवल है, और नंद बाबा उसको अपना पुत्र मान करके पालन करते हैं, गोद ले हुए एडॉप्टेड सन नहीं, यह बात ठीक ये कहते हैं मथुरा के लोग, मथुरा वाले ऐसा कहेंगे ये कृष्ण एडॉप्टेड सन है, किंतु ब्रजवासी कोई भी ब्रज का ये नहीं कहेगा उनके वो दत्तक पुत्र हैं, वो लोग कहेंगे जैसे कृष्ण इन्हीं के पैदा हुए, उस पर विश्वास नहीं करेंगे हम लोग, किसकी बात पर विश्वास करेंगे, ब्रजवासी लोग जो कहेंगे वही बात ठीक है, ब्रह्मा जी जो बात कहेंगे वो बात ठीक है। सुखदेव गोस्वामी अस्वाभाविक भाव में अपने आप हृदय की भावना निकल जाती है वो बात ठीक है। कभी कभी होता है एक आदमी जमुना के किनारे पानी भरने गए घड़ा लेकर, घर में पानी नहीं है वहां पर पानी भरने गए, और एक आदमी किसी खास कारण से पानी भरने गया, गोपियां पानी भरने के लिए गोपी घाट पर जाती हैं जमुना, पानी भरने के लिए जाती हैं,
उपलक्षण है
ये उपलक्षण है। बात ये ऊपर वाले कहेंगे यहाँ पानी भरने के लिए, जो भीतर में जानने वाले कहेंगे पानी भरने के लिए ही कृष्ण के दर्शन के लिए जा रहे हैं, मिलने के लिए जा रहे हैं, किंतु ये कृष्ण के दर्शन के लिए मिलने के लिए जाइए बात कहीं नहीं जाएगी, इसको गुप्त रखा जाएगा। जो पानी भरने जा रहा है और जिसके लिए पानी भरा जा रहा है और उसके जो संगी साथी हैं वही केवल जानेंगे, दूसरा नहीं जान। इसलिए सुखदेव गोस्वामी का कहने का क्या आशय है इसको वही समझेगा जो वैसा उनका आशय, दूसरे नहीं समझेंगे, क्योंकि परीक्षित महाराज जी को खुश करना है। परीक्षित महाराज जी को, परीक्षित महाराज जी बैठे हैं और उनसे ये बातें कह रहे हैं। परीक्षित महाराज सुभद्रा जी के पोते हैं, उनके लड़के के लड़के, कृष्ण सुभद्रा जी के भाई हैं, इसलिए परीक्षित महाराज जी का कृष्ण से, वसुदेव कृष्ण से संबंध है, इसलिए वो कह रहे हैं तुम्हारे वंश में ही ये जन्म लिए, इनको सुनकर के प्रसन्नता होगी। किंतु बात में जब कहते कहते कथा में आविष्ट हो जाएंगे अपने आप हृदय से निकल पड़ेगा ये कृष्ण का जन्म कहाँ हुआ, यशोदा जी के पास। जब तक होश है कह रहे हैं बात को छिपा रहे हैं इनको प्रसन्न करने के लिए, आज जब स्वाभाविक स्थिति में नहीं है अस्वाभाविक उसी को यह प्रकार है नंदस्तु आत्मज उत्पन्न, उनको पुत्र उत्पन्न होने पर बड़े प्रसन्न हुए। अब इस विषय को मिला करके हमको भागवत भर में देखना पड़ेगा या दूसरों शास्त्रों से, इधर में तो देवकी के घर में प्रकट हुए और कह रहे हैं नंद के पुत्र हैं, तो ये कैसे होगा। इसलिए कहते हैं जन्मना प्रजा जन्मना, जब कृष्ण का ब्रज में जन्म हुआ ब्रज अत्यंत सुशोभित हो गया, लक्ष्मी यहाँ की सेवा करने लगी। ये जन्मना ब्रज जब देखेंगे तो कहां पर उनका जन्म हुआ, ब्रज में जन्म हुआ, तो ये मथुरा को ब्रज कहेंगे कि नहीं, मथुरा ब्रज नहीं है, ब्रज की चार दीवारी ये है। विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जी इसी श्लोक की टीका में बतला रहे हैं वसुदेव जी को पुत्र हुआ, किंतु कंस के भय से उसका जात कर्म नहीं करा सके और पुत्र के लिए उत्सव नहीं कर सके, दान दक्षिणा भी नहीं दे सके। किंतु नंद बाबा कंस का कोई डर नहीं, इसलिए इन्होंने खूब उत्सव किए। यदि कंस को पता लग जाए कि वसुदेव का पुत्र हुआ है, तुरंत उसको मारने के लिए चेष्टा करे, इनको भी मारेगा उनको भी। इसलिए वसुदेव जी ने कहा, हमें तो लड़की हुई है, लड़का नहीं हुआ, लड़की हमारे पास जो कुछ है यही है। उन्होंने ये नहीं कहा जैसे हमको क्या हुआ नहीं हुआ, हमको जो हुआ आपके सामने में है। और जैसे ये देवबाणी ने मिथ्या कैसे कहा, ये तो मिथ्या भी बोलने लगी अब देवबाणी। उस लड़की को ही मारने की चेष्टा की, तो वहां पर कंस के भाई के मारे में उन्होंने जात कर्म नहीं कराए क्योंकि वो डर रहे थे। और नंदस्तु किंतु नंद ने भी यहां पर कराया, आत्मज उत्पन्न जाता हुआ दो महामना, अति विस्मित मना, अत्यंत विस्मित होकर और बड़े आश्चर्यचकित होकर के, बड़े आनंदित होकर के स्वस्ति वाचन कराए। स्वस्ति वाचन ब्राह्मण से कराते हैं। और जात कर्म, जात कर्म किसको कहते हैं, गर्भकाले तु असंपूर्ण इति, उन्होंने हरिवंश में भी ये कहा है। अभी गर्भ पूर्ण नहीं हुआ तो यशोदा जी को एक पुत्र और एक कन्या दोनों ही प्रकट हुई, होने पर जन्म होने पर माता का पुत्र के साथ में नारी का कुछ संबंध होता है, तो यहाँ पर ये काटी गई या जो कुछ संस्कार हुआ वहां पर कोई जन्म का चिन्ह नहीं मथुरा में। आज जब ये जात कर्म होता है तो ब्राह्मण लोग आते हैं, नस पहले वो गाइयाँ आती थी और ये सब काम करती थी, और सूतिका भी होता था, उसमें बच्चे रहते थे, पालन पोषण होता था। तो ये सूतिका भी हमें उनका नाड़ी छेद हुआ, ब्राह्मण लोग आए स्वस्ति वाचन कराया और दान दक्षिणा जितना जो सब पुरस्कार इत्यादि सब देने। ठाकुर जी ये मत सचो जो देवकी के पुत्र में यहाँ पर उत्पन्न हुए, एक दो बात नहीं, एक दो जगह नहीं, हजारों ऐसे वाक्य हैं जिसके द्वारा इसकी पुष्टि होती है। जब कृष्ण गोकुल में ही जन्मे, यहाँ पर जन्म ही नहीं हुआ, यहाँ पर आविर्भाव मान हुआ। आविर्भाव जिसको कहते हैं, खंभे से प्रहलाद महाराज जी के वचन को रक्षा करने के लिए प्रकट हो गए, ब्रह्मा जी के नासिका से बराद जी का जन्म हो गया, किंतु कोई भी नहीं कहता है वो नृसिंह देव जी की मैया और बाप का नाम खंभा है,
नहीं कहता।
ब्रह्मा जी की नागरी से ये पैदा हुए हैं, इसलिए माता पिता ब्रह्मा है, कोई नहीं कहता। ध्रुव जी को आकाश से निकल करके हवा में से उनको दर्शन दिया, कोई नहीं कहता जे ध्रुव जी के जो नारायण है उनके माता पिता हवा। इस तरह से गर्भ से होने से ही माता पिता का ये भाव नहीं होता। प्रेम चाहिए, प्रेम नहीं है तो वो भगवान उनके पुत्र के रूप में नहीं है। ये सभी लोग जानते हैं कि यशोदा जी का पुत्र वात्सल्य देवकी और वसुदेव जी से हजार गुना अधिक था, सभी लोग माने। कहते एक दो ही प्रयोग नहीं है, हजार उदाहरण इसके लिए हैं। इसलिए कह रहे हैं जबकि वसुदेव जी देवी को वहां से लेकर के आए, योग माया को, और कंस ने झपट करके उसको छीन लिया, और देवकी ने कहा भैया इसकी प्राण रक्षा करो, जब ये बड़ी हो जाएगी तो तेरे पुत्र के साथ में इसकी शादी कर दूंगी। तो अभी उसका मन द्रवित नहीं हुआ, तो अभी जबरदस्ती खींच करके मारने की चेष्टा की, किंतु हाथ से वो निकल गई। उसमें सुखदेव गोस्वामी ने वर्णन किया है, अदृश्यत अनुजा विष्णु इति, विष्णु की अनुजा, अनुजा माने पीछे से पैदा होने वाली, जो जवत संतान होती है या छोटी बहन, उसको अनुजा कहते हैं। तो ये विष्णु की अनुजा कैसे ये योग माया हुई, जो कि यशोदा के गर्भ से निकली है, तो यशोदा के गर्भ से एक पुत्र भी होना जरूरी है, तभी तो उसकी छोटी बहन होगी। इसलिए अदृश्यत अनुजा, वो आकाश मार्ग में कृष्ण की जो बहन है वो अंतर्ध्यान हो गई, इसलिए अनुजा माने होता है कृष्ण के पीछे जन्म लेने वाली। इसलिए कृष्ण का जन्म वहां गोकुल में हुआ। ये आए हमारे जो कि कृष्ण का नामकरण किया गंगाचार्य, वहां आकर के बोले तुमको पुत्र हुआ है, बड़े प्रसन्न हुए। कृष्ण और बलदेव दोनों को दिखाया, मुग्ध होकर के वो समझ लिए, उन्होंने समझा कि ये तो वसुदेव का ही पुत्र है। उसमें इन्होंने कहा कि प्रागयम वसुदेवस्य क्वचित जातस तद्वा आत्मज, ये कभी वसुदेव का पुत्र हुआ था, वसु मैंने कब हुआ था, अरे पहले अभी एक महीने पहले, नामकरण से कुछ दिन पहले ये हुए। ये कहाँ के रहने वाले हैं, मथुरा के रहने वाले हैं, वसुदेव जी के ये पुरोहित हैं। इसलिए ज्ञान के द्वारा जो जाना जाएगा, तत्व जानने वाले के द्वारा जो तत्व से जानते हैं, वो देखेंगे ये वसुदेव के ही पुत्र हैं। आज प्रेम से और भक्ति से विचार करेंगे, जिनके हृदय में प्रेम है, वो देखेंगे ये क्या यशोदा। इसलिए अक्रूर जी, उद्धव जी, ये गर्गाचार्य जी, मथुरा के जितने ब्राह्मण विद्वान थे ज्योतिष जानने वाले, और वहाँ के लोग सब लोग कहते हैं कि मथुरा में ही उनका जन्म हुआ। और नारद जी हैं, ब्रह्मा जी हैं, भक्ति से जो जानने वाले हैं, जिनको अधिक भक्ति है, वो कहते हैं कि नहीं ये यशोदा है। यहाँ पर आंशिक रूप में, वहां पर परिपूर्ण रूप से हैं। फिर कहते हैं ब्रह्मा जी नमित्यते अब्रबहु से तरिदंबराय पशुपंगजाय, पशुपंगजाय। जिस समय में ब्रह्मा जी बच्चों को और बच्चों को गोपालकों को हरण करके रख दिया, और एक वर्ष के बाद में फिर आए, उन्होंने देखा कृष्ण उसी प्रकार से हाथों में कवल रखे हुए, बेत्र बेशानु इधर उधर लगाए हुए, और खो जड़ाए बछड़ों। थोड़ी देर के बाद में देखा कि सब जितने थे चतुर्भुज मूर्ति हो गई, जितने बालक थे जितने बछड़े थे, आंख बंद हो गई, भूमि में लौट करके तौस आरंभ किया। इतने में देखते हैं कि फिर वही कौल बेत्र बेशानु लेकर के बेशानु, अब वो प्रश्न ये करने लगे, उनको हाथ जोड़ करके वंदना करें। पहले श्लोक में ही उन्होंने कहा पशुपंगजाय, पशु पर पशु प माने पालन करने वाला, कौन है नंद बाबा हैं, उनके अंग से उत्पन्न होने वाले, उनके पुत्र के रूप में ये, इसलिए पशुपंगजाय। गौतमी में भी बतलाया गया बल्लवी नंदनम बंदे, बल्लवी नंदनम बंदे, बल्लवी मैंने गोपी, नंदनम उनके पुत्र के। इस प्रकार से क्रमदीप टीका इत्यादि में भी नंद गोप तनयः, नंद गोप तनय कहा गया। श्रीमद् भागवत के और भी जगहों में देवकी जन्म बादो जननिवासो देवकी जन्म बाद, देवकी का जो जन्म है कृष्ण का इनके गर्भ से, ये बाद है, केवल एक बाद मात्र है। यथार्थ में यशोदा के नखलु जसो न खलु गोपिका नंदनो, क्या आप उनके पुत्र यशोदा के नहीं है? निश्चित रूप में उनके पुत्र है। तो आपका स्वभाव ऐसे कैसे हो गया, रूखा निश्चित कैसे हो गया, आप तो यशोदा के। इस तरह से जहां भी देखते हैं श्रीमद् भागवत में सर्वत्र उन्होंने इसी का वर्णन किया। मंत्र में भी जैसे गोपाल मंत्र है, गोपाल मंत्र में भी ऐसा ही भाव है। जहां भी देखेंगे सर्वत्र कृष्ण ये यशोदा के ही आनंद बाबा के ही पुत्र ठहरते हैं। मंत्र में कहा गया है नंद पुत्र पदम, अर्थात तो नंद जी के पुत्र का चरण कमल हम भजन करना चाहते हैं। केचि तु कृष्णस्य वसुदेव पुत्रत्व विजय सखत्व, वो कहते हैं कि लिखा है श्रीमद् भागवत में विजय सख सखे गीयतां तत् प्रसंगः, कहाँ है कमल की, क्या है विजय सख गीयतां तत् प्रसंगः, गोपियां ताना मारते हुए कृष्ण से कह रही, अरे भ्रमर तू यहाँ पर क्यों मर रहा है, हमारे चरणों में क्यों आ रहा है, तो मधुपुरी में जा, वहां पर विजय सख है, विजय के सखा है। विजय सख मतलब विजय का एक नाम है, अर्जुन का नाम है विजय, उनके पास में जाओ और वहां पर तुमको मथुरा की जो राजकुमारियां हैं वहां की जो बधुए हैं तुमको प्रचुर रूप में इनाम देंगे। क्यों इनाम देंगे, पुरस्कार, क्योंकि रोज न कोई माननी बनेगी और कृष्ण उसे मनाएंगे, जब मनाएंगे तो वो तुमको पुरस्कार तुमको देंगे, जाओ उन्हीं का गुणगान करो। इस तरह से वहां पर विजय सब का अर्थ क्या होगा, यहाँ पर और कभी कभी लिखा गया रुक्मिणी कांत, उसका क्या अर्थ करेंगे, प्रेम मिश्र संबंध मूल के अभ्यास का साथ नंद पुत्रत्व सुबद सख, इसलिए कहते हैं कि वो तो ले रहा है ये लो सुबल सख मुपेता दूत का नहस्ता क्षण हमारा दे विजय सख के बदले में सुबल सख। कृष्ण के एक सखा का नाम भी विजय था जो कृष्ण से उम्र में बड़ा था और उनकी सब समय रक्षा करता था, इसलिए विजय सख कहने से नंदन अथवा यशोदा नंदन वहां पर होगा अर्थ होगा। इसलिए यहाँ पर प्रेमी लोग सुबल सख इसी को कहते हैं कृष्ण को ही। इस तरह से इन्होंने ये वर्णन किया और भी एक दो जगह नहीं हजारों जगह ऐसा। वैष्णव दोषी में हमारे सनातन गोस्वामी ने विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने करीब करीब प्रति श्लोक में ही इसका प्रतिपादन किया है। इसलिए ये नंद के ही पुत्र हैं, बहुत बड़ा भारी विशाल आयोजन किया उन्होंने। एक बात और समझिए, सबसे कृष्ण का धाम श्रेष्ठ कौन धाम है, गोकुल वृंदावन, और द्वारका धाम उसके बहुत नीचे है। तो कृष्ण सब समय ही गोकुल वृंदावन में रहते, वृंदावनम परित्यज्य पाद एकम न गच्छति, तो वृंदावन को कभी छोड़कर के नहीं जाते, तो उनका जन्म उसको छोड़कर के और कहां हो सकता है, इसे कभी भी वृंदावन को छोड़कर के वो देवकी नंदन यशोदा नंदन कभी भी उनका एक अंश जिसको विभाव वैभव वैभव आप इत्यादि कहते हैं वो यहाँ पर आविर्भूत होता है। इसलिए ये भी गलत नहीं है, ये भी ठीक है, किंतु अंश रूप में रुक्मिणी कांत है, किंतु रुक्मिणी कांत से भी राधा कांत और नमस्ते ये बहुत श्रेष्ठ है। इसलिए जहां पर यहां पर प्रेम का प्रकाश अधिक नहीं हुआ, प्रेम का प्रकाश वृंदावन में ही हुआ, गोकुल में ही हुआ, इसलिए बताया जिसको प्रेम है उसी के वो विशेष करके वो जिस समय में कि कंस को मारने के लिए कृष्ण और बलदेव यहां आते हैं मथुरा में, उस समय में कंस को मार करके और अपने डेरा पर जाते हैं कृष्णचंद्र जी, मरने के बाद में वो यहीं पर अक्रूर उग्रसेन महाराज वसुदेव देवकी कृष्ण को यहाँ पर रख देते हैं, नंद बाबा के पास में नहीं जाने देते, दोनों बड़े दुखी होते हैं। दो दिन के बाद में शाम को कृष्ण मिले उनसे, बड़े दुखी हो रहे हैं नंद बाबा, देखो तो ये कृष्ण बलदेव ही शायद समझते हैं कि हम देवकी और वसुदेव के पुत्र हैं, इसलिए हमारे पास में नहीं आ रहा है। बड़े इतने में जब आए दोनों रोने लगे, बाबा भी रोने लगे, दाहिने और बाएं जंघे पर उनको बैठा दिया, दाहिने जंघे पर बलदेव जी को और बाएं में कृष्ण को बैठा दिया और दोनों को इस प्रकार से पकड़ करके रोने लगे। बलदेव जी कहते हैं कि देखिए बाबा बड़ी विचित्र बात, ये लोग कहते हैं ये कंस कृष्ण और तुम दोनों वसुदेव देवकी के पुत्र हो और इसलिए आने नहीं देते, छिप करके आपके पास में आए। बलदेव जी ने वसुदेव जी ने नंद बाबा ने कहा ये बात तो ठीक है, तुम तो उनके पुत्र हो किंतु ये तो मेरा बेटा है, बलदेव के मैं का पुत्र नहीं हूं। इन्होंने वसुदेव जी ने जब मैं जन्म मेरा हुआ तो इन्होंने मेरा त्याग कर दिया, पालन पोषण किसने किया, एक दो प्रकार के पिता नहीं होते हैं, पिता बहुत तरह के होते हैं, पांच प्रकार के पिता होते हैं, एक तो जन्म देने वाला, दूसरा पालन पोषण करने वाला, तीसरा राजा, चौथा जिसने अपनी कन्या का विवाह दिया है वो भी पिता है ससुर, और गुरु एक पिता होता है सबसे बड़ा। तो इन्होंने जन्म के साथ ही साथ में हमारा प्रत्याग किया, नंद आपने हमारा पालन पोषण किया, आपने सब प्रकार से किया, इसलिए जिन्होंने पालन किया आपके अतिरिक्त में माता पिता दूसरा नहीं जानता, इसलिए आप ही हमारे पिता है। और जब तक उनसे मिलते तब पिता पिताजी उनको कहते, मैया इत्यादि कहते थे। इसलिए दूसरी बात, सबसे बड़ी बात एक है, कृष्ण का मान्य कि जन्म यहाँ पर हुआ भी मथुरा में, आप वसुदेव जी ले गए और बदले में लड़की को ले आए, पुत्र को रख दिया, तो पुत्र को अपना तभी कह सकते हैं यदि कन्या को लौटा दे, कन्या को कभी नहीं उन्होंने लौटाया, इसलिए पुत्र के हकदार कैसे बने, इसलिए हकदार नहीं बन सकते, पुत्र को लौटा दे नंद बाबा यशोदा को और कन्या को दे आए और तब फिर पुत्र को ले आए, किंतु उन्होंने पुत्र को जबरदस्ती अपने यहाँ ऊपर से मालूम होता है रख लिया, कन्या को लौटाए नहीं और कहें यदि हमारा ये पुत्र है तो ये अन्याय है। दूसरी बात, यहाँ पर इस जगत में कुछ स्थूल बातें होती हैं जो पर जगत में स्थूल नहीं, वहां पर सूक्ष्म में विचार किया जाता है। इसलिए पहले बताया जिसमें अधिक प्रेम है वही उनका नित्य माता पिता है। इसलिए वो नंद के ही पुत्र यशोदा के ही मैये और उनका जन्म स्थान गोकुल में ही वृंदावन में ब्रज में ही हुआ है। वहां पर कोई संस्कार नहीं हुआ, जात कर्म नहीं हुआ, गोकुल में जात कर्म हुआ। यहाँ पर नाड़ी इत्यादि का कोई पता ही नहीं, सूची पूजी का कुछ भी पता नहीं, और वहां पर जाकर के ये सब बातें, नाड़ी छेदन, ब्राह्मण का स्वस्ति वाचन, स्नान, पुत्र और मैया दोनों का, ये सब काम। नंद महाराज जी बड़े प्रसन्न हुए, ब्राह्मण को बुला करके उनको मुंह मांगा, जो कुछ था घर में सब कुछ दान कर दिया उनको। उन्होंने 10,000 गौवें देने की बात की थी, वसुदेव जी ने जेल खाने में मन ही मन में संकल्प किया किंतु दे नहीं पाए। जब कंस मार आ गया घर में लौटे, कंस मारने के पहले ही जबकि पहला पुत्र लौटा दिया, घर में जब आए तो बड़े प्रसन्न होकर के मारने के बाद, कंस के मारने के बाद आकर के उन्होंने 10,000 गाय, इन्होंने अयुत कितने लाखों लाखों गाय को उन्होंने गाय। धैर्य ना लीजिए उन्होंने ब्राह्मणों को 20 लाख गायें दी, रत्न सब खरीद ले आए, 9 लाख तो हुआ उनकी गाय और बाकी ले आकर के दान किया। रत्न सब सुवर्ण रत्न इत्यादि वस्त्र के द्वारा 7 पर्वत के तीन पर्वत इत्यादि सरकार इस तरह से बड़ा भारी उत्सव आरंभ किया। इसके बाद में स्नान शौच इत्यादि कर करके ब्राह्मण काष्ट दान कर दिन पर दिन उनके यहाँ उत्सव इत्यादि हो। आज रात हो गई, आज यहीं तक हम वक्त करते समाप्त कर, कल से हम लोग फिर या कुछ खाना इस 7 दिन के अंदर में नहीं चाहिए, इसलिए अपनी कथा को ही करते चलिए। फिर ज्ञान तस्य अखिल देह भाग, भगवान जो कृष्णचंद्र हैं ये समस्त ईश्वरों के ईश्वर हैं। आप अनुग्रह पूर्वक जो कृष्ण प्राणियों के अंदर और बाहर दोनों तरफ में स्थित हो करके मृत्यु और अमृत दोनों को दे रहे हैं। देखिए ना कितने लोग मर रहे हैं, जैसा कर्म करते हैं कर्मों के अनुसार में मृत्यु उनकी। इस तरह से वो काल के रूप में बाहर में स्थित और दूसरा अंतर में रहकर भक्ति की तरफ में प्रेरणा देकर उनको अजर अमर बना रहे हैं। जैसे कैसे कृष्ण महाभारत युद्ध में काल के रूप में प्रकट होकर अक्षौणी कितनी 18 अक्षौणी सेनाओं का, लाखों लाखों लोगों का 18 दिन के घमासान युद्ध में ही सबको समाप्त कर काल के रूप, और द्वारका में बैठे बैठे 56 करोड़ यादवों को मिनट भी नहीं लगे और ध्वंस करा दिया। जरासंध की सेनाएं आती गईं 18 अक्षौणी की कितनी किससे भी अधिक, और उसको ध्वंस करा करके धर्म की स्थापना की, असुरों का विनाश किया। इसलिए काल के रूप में है। और दूसरा, जिनको मारते हैं, ध्वंस कराते हैं, इनको क्या करते हैं, उनको अजर मर बना करके जन्म मृत्यु से भी पार, जैसे शिशुपाल को मारा, दंतपत्र को मारा, कंस को मारा, अघासुर को मारा, कूपणा को मारा, क्या किया, बड़े दयालु हैं, उनका ऊपर का शरीर छुड़ाकर और भीतर से उनको मुक्ति दे दी, और इससे संतुष्ट नहीं होकर के उनको क्या दे दिया, एकदम धात्री उचित गति, माता के समान उनको बना दिया, ऐसे वो बड़े दयालु। इसी तरह से वो मृत्यु और अमरता, अमरता माने मरना नहीं, ये दोनों चीज वो देते हैं, जो जैसा योग्य होता है उसको वो देते हैं। ऐसे जो प्रभु पूतना इत्यादि का वध किया, पूतना अघासुर बकासुर केशी काली इत्यादि का दमन किया, ये काल के रूप में, और उनको दिया अमृत मुक्ति, भक्तों को प्रेम रस पिलाया, ऐसे जो भगवान हैं इनकी लीला कथाओं को आप विराम मत दीजिए, मुझको तृष्णा बढ़ रही है सुनने के लिए, आप इसको बताइए। इसकी मैंने विशद व्याख्या उस दिन की थी, अब आगे मैं चलता हूँ। रोहिण्य स्तनय प्रोक्तो राम संकर्षण त्वया देवक्या गर्भ संबंध कुतो देहांतरम बिना, कस्मात् मुकुंदो भगवान पितुर्देहा प्रजंतत क्व वासं ज्ञातिभिः।